राधे मेरी स्वामिनी, मेरा राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावनवास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सोते रो आधी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, 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 यमुना तीर वन जारी, यमुना तीर वन जारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, हा यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वन जारी, यमुना तीर वन जारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
सभी लोग प्रेम से गाइए,
हरे हरे राम
हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे हरे,
हरे राम राम राम
हरे हरे हरे,
हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे हरे,
हरे राम राम राम
हरे हरे हरे, हरे हरे हरे
हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे हरे,
हरे राम राम राम
हरे हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम
राम राम हरे हरे हरे,
कृष्णा कृष्णा
हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय हो जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय हो जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय 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 प्रभुपाद 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 श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की राधा राधा गिरधारी भगवान की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की श्री गौर निताय की श्रील प्रभुपाद की दाय गौर प्रेमानंदिनी ओ नमो भगवते वासुदेवाय ओ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठ की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 45 और 46। मेरे पीछे दोहराइए। प्रसादाभिमुखं शश्व प्रसन्नवदने क्षणम् सुनासं सुब्रुवं चारु कपोलं सुरसुन्दरम् तरुणं रमणीयांगम् अरुणोष्ठेक्षणाधरम् प्रणताश्रयणं नृम्णम् शरण्यं करुणार्णवम्। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं गुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातम् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजी साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव अधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमो तप्त काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवि प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासाद श्री गौर हरे वंशी विभूषित करा नवनील दाभा पीतांबर दारुण बिंब फल धरो पूर्णेन्दु सुन्दर मुखात् अरविन्द नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने किरात हूणा घ्रपुलिन्द पुलकसा आभीर नीलकंका यवना खसादय ये च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मे प्रभविष्णवे नमः प्रचोदिताजे न पुरा सरस्वती वितन्वताज ससतिं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणाप्रा दुर्भूत्किलास्यत समे ऋषीणा ऋषभ प्रसीदताम् भूर्तेर्महद्भिः यैमा पुरो विभो निर्मायशेते यदमूष पूरुषम् भुङ्क्तेर्गुणानशो नशोडशात्मक सोलंक श्रेष्ठ भगवान वचांसि में। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित प्रति रविवार इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत दिनों के बाद ठिकाना मिला है हमें। भगवान श्री कृष्ण की अजीब अजीब लीलाएं हैं। वे अपने भक्तों को कहां घुमाना चाहते हैं, कहां पर ठहराना चाहते हैं, ये सब भगवान के हाथ में है। बहुत दिनों से यहाँ के सब भक्त कठिनाई सह रहे हैं। कोई स्थान फिक्स नहीं मिल रहा था, परंतु हमारे राम सिंह प्रभु और पराग प्रभु के अगाह परिश्रम के बाद यह स्थान हमें प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर एक साल तक नित्य कथा कीर्तन होगा। वैसे तो हम जीवन भर यही करना है, परंतु एक साल का एग्रीमेंट हम किए हैं। तो भगवान के नाम का गुणगान करना और भगवान की कथा सुनना, यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। संसार में हम देख रहे हैं कलयुग के प्रभाव के कारण सब लोग के आचरण, सब लोग के विचार दूषित होते जा रहे हैं। प्रायः सभी लोगों में बहुत गलत गलत विचार उठते हैं। और एक जगह कहा है कि व्यक्ति छोटा या बड़ा अपने विचारों से बनता है। यदि किसी व्यक्ति के पास करोड़ों करोड़ों अरब रुपये हो, परंतु उनके मन में यह विचार उठते हैं कि मैं किसी पराई स्त्री के साथ संग करूंगा, या किसी होटल में जाकर शराब पीऊंगा, ऐसे विचार यदि करोड़ों पति के मन में आते हैं, तो भले उनके पास बहुत बहुत धन है, फिर भी वो बहुत नीच व्यक्ति है, नीचा है। परंतु यदि कोई झोपड़ी में रहने वाला भी क्यों न हो, झोपड़ी में रहने के बाद भी व्यक्ति यह सोचता है कि आज भले मेरे पास कम धन है, परंतु जब मेरे पास धन आएगा और वह धन मैं भगवान के भक्तों की सेवा के लिए इस्तेमाल करूंगा, उसके पास धन नहीं है और वह धन उसके पास कभी आने भी वाला नहीं है, परंतु उनके विचार ऐसे नेक हैं कि मेरा धन मैं भगवान की सेवा में इस्तेमाल करूंगा, जीवन भगवान की भक्ति में लगाऊंगा, भले वह झोपड़ी में रह रहा है परंतु ऐसे विचार है तो वह बहुत बड़ा व्यक्ति है, उस करोड़ों अरबों पति से भी वह बड़ा है। व्यक्ति विचार से छोटा और बड़ा होता है। तो इस घोर कलयुग में अच्छे विचार यदि लाने हो तो भगवान की कथा सुननी चाहिए। भगवान की कथा सुनने से मन में अच्छे अच्छे विचार आते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं,
सचिव सुभट भूपति विचार के, सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लो बहुदधि अपार के।
हमारे मन में अच्छे विचार लाने के लिए भगवान की कथा एक राजा के मंत्री और सैन्य के समान है। राजा राजा तब बनता है जब उसके पास मंत्री और सेना हो। ठीक उसी प्रकार भगवान की कथा अच्छे विचार प्रकट करने के लिए उस राजा के मंत्री और सेना के समान है। और इतना ही नहीं, यदि कोई भगवान की कथा सुनता है तो वह लोभ से मुक्त हो सकता है। इस संसार में हम देखते हैं प्रायः मनुष्य समाज बहुत लोभी है। लोभ सबको होता है, किसी ना किसी अलग अलग भौतिक वस्तुओं में लोभ निश्चित रूप से होता है। और गीता में भगवान कहते हैं यह लोभ नरक का खुला द्वार है। त्रिविदम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः, काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। हे अर्जुन, ये काम क्रोध और लोभ नरक में जाने के द्वार है, इसलिए तस्मात् इसलिए एतत् ये तीनों को त्यजेत, त्यागना चाहिए। परंतु कैसे त्यागा जाए, ये भगवत गीता में भगवान ने बहुत बहुत उपदेश दे दिए कि सर्वधर्मान परित्यज्य, मेरे पास आओ, ये सब त्यागो, मेरे मुझ में मन लगाओ। परंतु कैसे भगवान में मन लगे, इसका उत्तर है भागवत कथा सुनकर। यदि कोई व्यक्ति भागवत कथा सुनता है तो लोभ जैसे दुर्गुण से मुक्त हो सकता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि लोभ को दूर करने के लिए भगवान की कथा अगस्त्य मुनि के समान है। ये लोभ की तुलना समुद्र के साथ की गई है, क्योंकि समुद्र में अगाह जल होता है, बहुत मात्रा में पानी होता है। परंतु बहुत बहुत पानी होने के बाद भी एक ग्लास भी कोई पी सकता है? नहीं पी सकता। ठीक उसी प्रकार इस संसार में कुछ लोभियों के पास बहुत बहुत धन होता है, परंतु लोभी के बहुत बहुत धनों में से एक रुपया भी वे दूसरों को दूसरे के काम में नहीं लगाते हैं। इसलिए लोभियों की तुलना समुद्र के जल के साथ की गई है। तो यह लोभ मिट सकता है। जैसे समुद्र को सुखाने के लिए अगस्त्य जी माहिर हैं। अगस्त्य जी का नाम आपने सुना होगा, उसका एक नाम कुंभज है। ये अगस्त्य जी का जन्म एक कुंभ से हुआ था। और एक समय की बात, असुरगण साधुओं को बहुत परेशान करने लगे, साधुओं के यज्ञ में बाधा देने लगे और साधुओं का वध करने लगे। जब साधु संत ने देवताओं को कहा कि इस असुरों से मुक्त कराओ, सभी देवतागण आए, असुरों को मारने जब जाते थे तो ये सारे असुर समुद्र में जाकर छिप जाते थे। और देवतागण इतने गहरे समुद्र में नहीं जा सकते थे। जब ये देवतागण चले जाते तब ये असुरगण समुद्र से बाहर निकलते और साधु संतों को मारते और पीटते। और जब देवतागण उसके साथ युद्ध करने आते तो ये सभी असुरगण समुद्र में जाकर छिप जाते। अब क्या करें। तो सभी देवतागण मिलकर अगस्त्य जी के पास गए, कुंभज ऋषि के पास, और जाकर कहे कि कृपया करके आप कुछ करो, इस समुद्र से असुरों को बाहर निकालो। कुंभज ऋषि ने कहा डरो मत। कुंभज ऋषि ने तीन घूट में राम 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 भगवान श्री रामचंद्र का नाम लेकर कुंभज ऋषि ने तीन घूट में सारे समुद्र को पी लिया। और जब पानी खाली हो गया, देवताओं को कहा देखो ये तुम्हारे असुर सामने खड़े हैं, मारो सबको। देवताओं ने सारे असुरों का वध किया। तात्पर्य यह है कुंभज ऋषि समुद्र को पी गए। तो जैसे समुद्र को कुंभज ऋषि पी गए, ठीक उसी प्रकार लोभ को यदि मिटाना है तो भगवान की कथा सुननी चाहिए। भगवान की कथा लोभ को मिटाने के लिए कुंभज ऋषि के समान है। तो भागवत ग्रंथ भगवान की कथा से पूरित है, भगवान के भक्त की कथा से पूरित है। प्राय मैं कहता हूं कि भगवान की कथा सुनने से भगवान के भक्त प्रसन्न होते हैं, परंतु यदि भगवान के भक्त की कथा सुनी जाए तो भगवान प्रसन्न होते हैं। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए यहां पर हम प्रति रविवार को भगवान के परम विशुद्ध भक्त ध्रुव महाराज की कथा सुन रहे हैं। ये कथा तो हमने बहुत पहले प्रारंभ की थी, परंतु बीच में बहुत बहुत विघ्न आए, स्थानांतर हुआ, इसलिए इस कथा को विराम दिया था। तो आज से इस कथा को हम प्रारंभ करते हैं। सबको यह कथा याद होगी, और यदि याद नहीं है तो पुनरावर्तन कर देता हूं संक्षिप्त में। इस संसार में सर्वप्रथम जीव ब्रह्मा जी, जिनका जन्म भगवान विष्णु के नाभि कमल से हुआ, ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र उत्पन्न किए, परंतु ये 10 ब्रह्मचारी बन गए, गृहस्थ कोई नहीं बना। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये सब लोग ब्रह्मचारी बनते जा रहे हैं, तो ब्रह्मा जी ने अपने मन से मनु और शत्रुपा को जन्म दिया। अपने हाथों से, एक हाथ से मनु और एक हाथ से शत्रुपा, मनु और शत्रुपा ने विवाह किया, और मनु और शत्रुपा के 5 संतान हुए, उनमें से 2 पुत्र थे और 3 पुत्री थी। 3 पुत्री आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो उत्तानपाद की कथा सुनाते हुए सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कहते हैं हरे कृष्णा महाराज उत्तानपाद की 2 पत्नी थी, एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। कहते हैं इस संसार में 2 प्रकार की पत्नियां होती हैं। एक प्रकार की पत्नी होती है जिसे सुनीति कहते हैं। सुनीति का अर्थ होता है सुष्टु रूपेण नीति, जो शास्त्र के नीति के अनुसार अपना जीवन व्यापन करे, अपने पति की, अपने फैमिली में रहने वाले सभी लोगों की सेवा करे, उसे सुनीति कहते हैं। और सुरुचि का अर्थ होता है जो अपने रुचि के अनुसार चले, इसे सुरुचि कहते हैं। तो आज इस संसार में सुरुचि का प्रमाण ज्यादा होगा, अपने रुचि के अनुसार चलती है। तो ये दोनों प्रकार की पत्नी महाराज उत्तानपाद को प्राप्त थी। महाराज उत्तानपाद की पहली पत्नी सुनीति थी, उसे कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ था। तो सुनीति के कहने पर महाराज उत्तानपाद ने दूसरी पत्नी के साथ विवाह किया, जिसका नाम था सुरुचि। सुरुचि के साथ विवाह करके महाराज उत्तानपाद घर पर आए। सुरुचि ने देखा कि पहले से एक पत्नी घर पर बैठी है। सुरुचि ने कहा कि या तो मैं इस घर पर रहूंगी या तो वह रहेगी। स्त्रियों में ईर्ष्या स्वाभाविक होती है। महाराज उत्तानपाद ने अपनी पहली पत्नी सुनीति को घर से निकाल दिया। देखिए, जिस पत्नी के कहने से ही सुरुचि के साथ विवाह किया था, उस पत्नी को ही घर से बाहर। अघट घटना पटिए सी भगवान की शक्ति, कब किसको महल से रोड पर ला दे और कब किसको रोड से महल में बिठा दे, कब करोड़पति रोडपति बन जाए, कोई भरोसा नहीं। एक ही क्षण में व्यक्ति शेयर बाजार में, इतने शेयर किसी के पास है, शेयर बाजार डाउन, करोड़पति रोड पे आ जाता है। ये भगवान की एक शक्ति है और अपने कर्म की सजा है। सुनीति को राजमहल से बाहर कर दिया और अपने उस राजमहल के दूर एक झोपड़ी में जाकर रहने लगी। अब भगवान का योग देव के अनुसार कुछ सालों के बाद सुरुचि के गर्भ में एक संतान उत्पन्न हुआ और भगवान की कृपा से सुनीति के गर्भ में भी एक संतान आ गई। देखिए, जब तक ये महल में थी तब तक कोई पुत्र नहीं हुआ, परंतु महल से बाहर झोपड़ी में जाकर रहने लगी तो एक पुत्र उसे भी हुआ और दोनों के गर्भ से पुत्र उत्पन्न हुए। सुनीति के गर्भ से पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम हुआ ध्रुव, जो हमारी इस कथा के हीरो है। और सुरुचि के गर्भ से जो उत्पन्न हुआ उसका नाम था उत्तम। तो उत्तम जो था, ये राज परिवार में उसकी परिवर्ष हो रही थी, परवरिश हो रही थी, और ध्रुव बेचारा एक झोपड़ी में रह रहा था। राजा की पत्नी होने के बाद भी राजा के घर से एक रुपया भी नहीं मिलता था। शास्त्रों में लिखा है कि सुनीति सुबह जाती थी जंगल में, लकड़ियां बटोरकर उसे बेचकर जो धन मिलता था उसे बेचकर उस धन से अपना खाना पीना और अपने बच्चे का गुजरान चलाती थी। ध्रुव कभी कभी खेलने के लिए राजा के वहां उत्तम के साथ, क्योंकि दोनों सम वयस्क थे ध्रुव और उत्तम, तो कभी कभी राजमहल में आ जाते थे। परंतु कुछ आचार्य कहते थे ध्रुव को केवल खेलने के लिए वहां पर दिया जाता था, भोजन और सोना उसको सुनीति के झोंपड़ी में आकर ही करना था। तो इस प्रकार से ध्रुव और उत्तम का जीवन चल रहा था। जब ये ध्रुव 5 साल के हुए, 4 या 5 साल के हुए, एक दिन की बात, वे अपने मित्र, अपने सौतेले भाई उत्तम के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते राजा के राज सिंहासन पे जाकर, वहां पर जाकर खेलने लगे। राजा अपने राज सिंहासन पर बैठे थे, बाजू में सुरुचि बैठी थी। उत्तम खेलते खेलते अपने पिता के चरण के पास गया और सिंहासन के ऊपर बैठने का प्रयास किया। पिता उत्तानपाद ने उत्तम को लेकर अपने गोद में बिठा दिया। ध्रुव, बच्चों में यह होड़ होती है कि एक बच्चा जो कार्य करे दूसरा भी वही करना चाहता है, तो ध्रुव भी अपने पिता के गोद में बैठने के लिए प्रयास किया। पिता उत्तानपाद की इच्छा थी कि ध्रुव को मैं ध्रुव को भी गोद में बिठाऊं, परंतु बाजू में मैजिस्ट्रेट बैठे थे, यदि ध्रुव को गोद में बिठा ले तो तुरंत सुनवाई कर देती थी। अपनी पत्नी के डर के कारण उत्तानपाद ध्रुव को अपनी गोद में नहीं बिठा सके। ध्रुव ने बहुत प्रयास किया अपने छोटे छोटे पांवों से पिताजी के गोद में बैठने का, और जंप लगाकर पिताजी की गोद में बैठने जा ही रहे थे, तुरंत सुरुचि ने ध्रुव को धक्का मार के उस सिंहासन के नीचे गिरा दिया। और ध्रुव जैसे ही उस सिंहासन से गिरा, बेचारा रोने लगा। सुरुचि ने कहा कि तुम नहीं बैठ सकते हो इस सिंहासन के ऊपर। ध्रुव ने कहा क्यों? सुरुचि ने कहा कि तुम बहुत छोटे हो, बालक हो, यद्यपि तुम मेरी बात को नहीं समझ सकते हो, परंतु फिर भी तुमने पूछा है इसलिए समझाती हूं कि तुम इसलिए यहां पर नहीं बैठ सकते हो क्योंकि तुम मेरे पुत्र नहीं हो। ध्रुव ने पूछा होगा, मैं राजा का ही पुत्र हूं, ये मेरे पिताजी में है, मैं उनका पुत्र हूं। सुरुचि ने कहा कि तुम राजा के पुत्र हो सकते हो परंतु रानी के पुत्र नहीं हो। यदि तुम्हें इस राज सिंहासन पर बैठना है तो रानी का पुत्र बनना होगा। और इसके लिए सबसे पहले तपसा आराध्य पुरुषम, सबसे पहले तुम परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु की आराधना करो। तस्य एवा अनुग्रहण में, और जब वो प्रसन्न हो जाएंगे, जब वे तुम्हें दर्शन देंगे, तब जाकर तुम्हें मेरे गर्भ में जन्म देंगे। देखिए कितना अहंकार है। भगवान भी तुम्हें इस गादी पर नहीं बिठा सकते हैं, भगवान भी तुम्हें कृपा करके मेरे गर्भ में गर्भ से जन्म देंगे, और मेरे गर्भ से जब तुम जन्म लोगे तब जाकर तुम राजा के गोद में बैठ सकते हो, अन्यथा। तो इस प्रकार से सुनीति सुरुचि ने कहा। ध्रुव ने कहा और कोई उपाय है बैठने का? कहा कि भगवान की आराधना करो। तो इस प्रकार से सुनी सुरुचि के यह कटु वचन सुनकर ध्रुव बहुत रोने लगा। जैसे किसी सांप सर्प को डंडे से मारा जाए और सब फुंकारने लगता है, वैसे ही सुरुचि के तीखे बाण से अपने हृदय को बींधे हुए ध्रुव रोते हुए अपनी मां सुनीति के पास आया, आकर गोद में लेट गया। सुनीति ने बहुत पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो, क्या हुआ, किसी ने गाली दी, किसी ने मारा? परंतु ध्रुव तो इतना रो रहे थे बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अंत में आजू बाजू में रहने वाले लोगों ने कहा कि इसकी सौतेली मां ने इसे कटु वचन कहे हैं, इसलिए रो रहा है। यह सुनकर सुनीति भी रोने लगी कि संसार में हमारा कोई नहीं है। सुनीति रोने लगी, रोते रोते सोच रही है कि यदि मैं रोऊंगी तो यह ध्रुव को कौन शांत करेगा, ध्रुव का इस संसार में मेरे अलावा कौन है। सुनीति ने कैसे भी करके अपने आप को धीरज रखा और धीरज रख के ध्रुव को समझाया, बेटा तुम रो रहे हो, तुम इतने दुखी हो क्योंकि तुम दुर्भाग्यशालिनी मां के पुत्र हो, और यदि तुम राजा के सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो तुम्हारी सौतेली मां ने तुम्हें जो रास्ता बताया है बिल्कुल ठीक बताया है। यद्यपि तुम्हारी सौतेली मां ने ईर्ष्या के वश में आकर कहा है, परंतु उसका उद्देश्य बहुत ही सुंदर है। इसलिए यदि तुम्हें वहां पर बैठना है और इससे भी बड़ा राज्य चाहिए तो भगवान विष्णु के शरण में जाओ। ध्रुव ने पूछा, मां ऐसा कोई इस संसार में हो गया है जो भगवान विष्णु के पास विष्णु की शरण में जाकर यह राज्य का राजा बना हो? ध्रुव की माता ने कहा कि तुम्हारे पिता के पिता मनु और उनके पिता ब्रह्मा जी, यह ब्रह्मा ब्रह्मा तब बने जब भगवान विष्णु की 100 साल तक तपस्या किए, पूजा किए। ब्रह्मा जी मनु महाराज ये पूरे भूमंडल के शासन करता भगवान विष्णु की कृपा से बने हैं। और बेटा यदि तुम भी राजा बनना चाहते हो तो भगवान के पास जाओ। उस 5 साल के बालक ने कहा, माता अब ये बताओ भगवान कहां मिलते हैं? माता सुनीति ने कहा कि लोग भगवान की प्राप्ति करने के लिए प्रायः जंगल में चले जाते, जंगल में जाकर भगवान को प्राप्त करते हैं। ध्रुव तुरंत खड़े हुए कि यदि भगवान जंगल में मिलते हैं तो मैं तुरंत अभी ही जंगल में जाऊंगा। तुरंत ध्रुव खड़े होकर जंगल में जाने के निकल पड़े। प्रश्न होता है, क्या सुनीति को थोड़ा भी हृदय में कष्ट नहीं हुआ अपने 5 साल के बालक को जंगल में भेजने के लिए? एक बार भी ना नहीं कहा? जंगल में इतने हिंसक प्राणी होते हैं, इतने कोमल बालक को तो तुरंत चबा जाएंगे। परंतु सुनीति को भगवान के पर विश्वास था। तमेव वस्सा स्वयं भ्रीत वत्सलम स रक्षति रक्षति यो ही गर्भे। सुनीति ने यही सोचा कि जो भगवान एक बालक की रक्षा माता के गर्भ में कर सकते हैं तो वही भगवान की पूजा, वही भगवान की भक्ति करने के लिए मेरा पुत्र जा रहा है, क्यों भगवान उसकी रक्षा नहीं करेंगे? जिसका भजन करने जा रहा है निश्चित रूप से भगवान उसकी रक्षा करेंगे। भेज दिया अपने पुत्र को। ध्रुव महाराज गए जंगल में, जाते ही जैसे ही संसार में कोई अच्छी इच्छा करता है तो उस पर भगवान कृपा करते हैं, और भगवान कृपा डायरेक्ट नहीं करते हैं, भगवान गुरु के माध्यम से कृपा करते हैं। भगवान को कुछ बोलना भी होता है तो डायरेक्ट आकर नहीं बोलते हैं, वे गुरु के मुख से बोलते हैं। इसलिए गुरु मुख पद्म वाक्य चीते ते करी यज्ञ। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि हमारे गुरु गुरु के मुख से जो सुनते हैं, हमें ऐसे ही सोचना चाहिए कि ये भगवान के मुख से हम सुन रहे हैं। यदि मोर गुरु है चैतन्य दास, ये गुरु तो अपने आप को भगवान का दास ही समझते हैं, परंतु हम जिस गुरु के मुख से सुन रहे हैं वे गुरु को भगवान का स्वरूप ही मानकर उसके मुख से सुनना चाहिए, क्योंकि भगवान ही गुरु के मुख से किसी भक्त को उपदेश करते हैं। तो ध्रुव ने इच्छा प्रकट की कि मुझे भगवान से मिलना है। तुरंत भगवान ने एक गुरु और इस संसार के सबसे सर्वश्रेष्ठ गुरु नारद मुनि को भेज दिया, और उस घोर जंगल में नारद मुनि ध्रुव महाराज से मिले हैं। ये कथा तो बहुत विस्तृत रूप में है, परंतु संक्षिप्त में मैं आपको कह रहा हूं कि यह सब हो गया है। आप लोग कहेंगे प्रभु जी इतने सालों से क्या आप यही ध्रुव महाराज की कथा बता रहे हैं, परंतु देख रहे हैं पल पल क्षण क्षण में हमें एक नया नया चीज सुनने मिल रहा है। तो नारद मुनि मिले ध्रुव महाराज को। नारद मुनि ने सबसे पहले परीक्षा की कि ये बालक दृढ़ है कि नहीं। नारद मुनि ने कहा ध्रुव महाराज को, ये आप कहां जा रहे हो? ध्रुव महाराज ने कहा भगवान से मिलने जा रहा हूं। नारद मुनि ने कहा कि ये कोई साधारण काम नहीं है, तुम इतने छोटे से बालक हो, ये तो बुढ़ापे में करना चाहिए, भगवान का भजन कीर्तन तो बुढ़ापे में करना है, बचपन ये छोटी सी उम्र में क्यों करने जा रहे हैं? यही नारद मुनि प्रहलाद महाराज को कहते हैं कुमार आचरित प्राज्ञो, कुमार अवस्था से ही भजन भक्ति करनी चाहिए, और वह ध्रुव महाराज को कहते हैं बुढ़ापे में भक्ति करो, ये परीक्षा ले रहे हैं। इस संसार में प्राय सब लोग कहते हैं ये भक्ति भजन तो बुढ़ापे में करना चाहिए, जवानी में तो खेलना कूदना और विवाह करना और बच्चे पैदा। अरे बूढ़े होने के बाद ठीक से लैट्रिन भी नहीं जा सकते, भजन क्या कर सकते हैं? अब जवानी में ही इतनी तकलीफ होती है, ठीक से एक जगह पर बैठकर भी सोला माला नहीं कर सकते, मन नहीं लगता है, बूढ़ा एक जगह पर क्या बैठकर कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। वास्तव में ये भजन भक्ति ये जो है ये कुमार अवस्था से ही बचपन से ही करना चाहिए, परंतु नारद मुनि परीक्षा ले रहे हैं। ध्रुव महाराज ने कहा कि मुझे सर्वश्रेष्ठ राज्य चाहिए। नारद मुनि ने कहा इतनी सी बात, चलो घर पर तुम्हारे पिता मेरे शिष्य हैं, मैं उसे कहूंगा, वे तुरंत उस आपको राज्य दे देंगे। ध्रुव महाराज ने कहा ये साधारण राज्य नहीं चाहिए, पिताजी से भी बड़ा राज्य चाहिए की प्राप्ति करनी है, और आप इस प्रकार से मेरा टाइम वेस्ट मत करो, आपको यदि मुझे सद उपदेश देना है तो दो, नहीं तो आप भी यहां से चल बनो, मैं मेरा काम कर लूंगा। ध्रुव महाराज की दृढ़ता को देखकर नारद मुनि ध्रुव महाराज को कहे कि वत्स, तुम मेरी परीक्षा में पास हुए, और बेटा मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुमने कभी भगवान को देखा है? ध्रुव महाराज ने कहा देखा नहीं, सुना भी नहीं है उनके बारे। तब नारद मुनि ने कहा तो कैसे भगवान के पास जाओगे? तो नारद मुनि ने सबसे पहले ध्रुव महाराज को स्थान का निर्देश किया कि तुम वृंदावन में मधुवन में जाओ, और मधुवन में जाकर तुम अष्टांग योग के द्वारा अपने मन को स्थिर करो, और मन को स्थिर करने के बाद भगवान के रूप का ध्यान करो। ध्रुव महाराज ने कहा कि भगवान का रूप कैसा है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भगवान की कभी कल्पना ही की नहीं है, तो नारद मुनि ध्रुव महाराज को भगवान के रूप का वर्णन कर रहे हैं। नारद मुनि कह रहे हैं कि भगवान का रूप कैसा है, तो सबसे पहले कहते हैं प्रसादा अभिमुखम। आपके श्लोक में आज आज के श्लोक पर अब हम आ गए हैं। यहाँ तक तो प्लेटफॉर्म था, अब आज का श्लोक है। प्रसादा अभिमुखम शश्वत प्रसन्न वदन ईक्षणम सुनासम सुभ्रवम चारु कपोल सूर सुंदरम। बहुत सुंदर नारद मुनि भगवान के रूप का वर्णन इस श्लोक में किए हैं। सबसे पहले भगवान का रूप बताते हुए कहते हैं प्रसादा अभिमुखम। प्रसाद, प्रसाद का अर्थ आप जानते हैं? आपके श्लोक में पहला ही शब्द है प्रसाद। प्रसाद का शब्द सुनते ही भोजन याद आता है, और कुछ लोग तो बहुत भूखे होंगे, कुछ लोग तो सोच रहे होंगे कब ये बंद करेंगे और हम भोजन खाएंगे। प्रसाद का अर्थ होता है कृपा। ये जो प्रवचन के बाद हम प्रसाद लेते हैं, ये प्रसाद भगवान की कृपा है। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वासु नैव जायते। नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं जिसके बहुत अल्प पुण्य है वे विश्वासु न एव जायते। अल्प पुण्य वाले लोगों का विश्वास प्रसाद में कभी नहीं हो सकता है। शरीर अविद्या जाल जनेन्द्रिय ताहे जड़ेन्द्रिय ताहे का। ये जो हमारा शरीर है ये अविद्या का जाल है, और उसमें भी जो ये इंद्रिया हमें मिली है ये तो जड़ है। जीवे फैले विषयी सागरे, ये जो इंद्रिया है ये जीव को विषयों के सागर में घुमा देने वाली है। और तार मध्य जीवायति, ये सभी इंद्रियों में जो जीवा है ये तो लोभमय सुदुर्मति, ये तो बहुत लोभमय है। ये तो कभी चाहती है कि पानी पूरी खाऊं, कभी पाव भाजी, कभी ये होटल में, कभी ये चाट मसाला, कभी ये। और ऐसा जीवार लालसा यही इति उति धाये शिष्णोदर पारायण कृष्ण नहीं पाए, वो व्यक्ति कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकता है। ये जीवा है ये बहुत, और कभी कभी इतनी गाली बोलती है, इतने गलत कड़वे शब्द बोलती है, ये जीवा बहुत बेकार है। कभी कभी फिसल जाती है, गाली बोलती है जीवा और मार शरीर को खाना पड़ता है। इसलिए इसको बहुत वश में रखना चाहिए। तो ये जीवा जो है तार मध्य जीवायति लोभमय सुदर्मति ताके जटा कठिन संसारे। इसलिए इस संसार में विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है, परंतु कृष्ण बड़ो दयामय। ये जो बैठे हैं, खड़े हैं, ये बहुत दयामय है। करी वारे जीवा जय, ये जीवा को विजय करने के लिए स्व प्रसाद अन्न दिलो भाई, ये जीवा को पवित्र करने के लिए भगवान ने अपना स्व प्रसाद दे दिया। और कुछ टेंशन नहीं कि ये योग करो, ये ध्यान करो, कुछ नहीं, भगवान ने अपना प्रसाद दे दिया। सही अन्नामृत पाओ श्री राधा कृष्ण गुण, प्रसाद खाते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, अपनी जीवा को पवित्र करते रहो। हरे कृष्णा। तो प्रसाद का अर्थ होता है कृपा। इसीलिए यदि हमें कोई प्रसाद दे रहा हो तो कभी ना नहीं करनी चाहिए। प्रसाद का अर्थ कृपा है, भगवान की कृपा साक्षात सामने से आ रही है। और कुछ लोग कहते हैं हमें नहीं चाहिए, ये अपराध है, थोड़ा तो थोड़ा उसे ले लेना चाहिए। हम जब आ रहे थे तो मैंने सोचा था कि आज प्रसाद नहीं लूंगा, परंतु ये प्रवचन के बाद लेना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति उपदेश तब कर सकता है जब अपने जीवन में पालन करे। खैर, परंतु ये भी कह रहा हूं थोड़ा लेकर भी उसका आदर कर सकते हैं, इसलिए फोर्स मत कीजिएगा। तो प्रसादा, प्रसाद का अर्थ है कृपा। और अभिमुखम, अभिमुखम का अर्थ होता है तत्पर रहना। भगवान जो है, नारद मुनि ध्रुव महाराज को कहते हैं भगवान विष्णु कृपा देने के लिए तत्पर रहते हैं, तत्पर। आप देखेंगे कृष्ण कभी भी खड़े ही मिलेंगे। अरे तीनों लोगों के नाथ है, उनके इशारे से मया दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचरण, उनके इशारे से ये प्रकृति काम करती है, आराम से नहीं बैठ सकते। अरे हम भी कभी दिन में दो तीन घंटा अपने सोफे पर आराम से बैठते हैं, भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ है, नहीं बैठ सकते। बैठ सकते हैं परंतु भगवान कृपा देने के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। और ये तो फिर भी अपने काम में रहते हैं, परंतु यही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो आजानुलंबित भुजो दोनों हाथ उठा करके, जैसे यहां पर आप देखेंगे दोनों हाथ उठा करके बांटते रहते हैं शुद्ध भक्ति भगवान का नाम। तो भगवान कृपा देने के लिए प्रसादा अभिमुखम, कृपा देने के लिए तत्पर रहते हैं। भगवान चाहते हैं कब व्यक्ति मेरे पास आए और मैं उसे कृपा दूं। कोई व्यक्ति एक कदम भी भगवान के ओर बढ़ता है तो भगवान 100 कदम बढ़ाते हैं, पर इस संसार में रहने वाले लोगों का दुर्भाग्य है कि एक कदम भी नहीं बढ़ाते हैं। भगवान की इच्छा होती है, तत्पर रहते हैं कृपा देने के लिए। अरे संसार में लोगों की हालत है कि कृपा देने की बात तो दूर रही, सामने से व्यक्ति कोई भिक्षुक भीख मांगने के लिए आता है तो भगवान तो अभिमुखम होते हैं, हम उसके विमुख हो जाते हैं, घूम जाते हैं, परंतु भगवान तत्पर रहते हैं। बहुत बहुत दृष्टांत है, केवल एक दृष्टांत दूं कि एक बहुत बड़ा हाथी था जिसका नाम था गजेंद्र। ये गजेंद्र स्नान करने के लिए सरोवर में गया और मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया। भागवत के अष्टम स्कंद में यह कथा है। मगरमच्छ के द्वारा पकड़ा गया और गजेंद्र को धीरे धीरे वह मगरमच्छ बीच तालाब में लेकर गया। वह हाथी डूबने ही जा रहा था, उनका मुख केवल बाहर रह गया, मुख बाहर रह गया। उसको पूर्व जन्म की स्मृति याद आई और भगवान को याद किया, भगवान को याद करके भगवान का नाम लिया, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। बहुत सुंदर भगवान की स्तुति की। जब गजेंद्र ने भगवान का नाम लिया, भगवान का नाम लेते ही भगवान लक्ष्मी जी के बाजू में बैठे थे, वहां से तुरंत भगवान जंप लगाया। गरुड़ जी ने कहा कि प्रभु आप मेरी पीठ के ऊपर बैठ जाइए, मैं तुरंत उस गजेंद्र के पास आपको पहुंचा दूंगा। भगवान ने कहा तुम्हारी गति बहुत स्लो है, यद्यपि गरुड़ मन की गति से चलते हैं, परंतु भगवान अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए कितने तत्पर रहते हैं। लक्ष्मी जी ने पूछा प्रभु कहां जा रहे हो इतने जल्दी, क्या किसका कॉल आ गया, कहां जा रहे हैं? कहते भगवान ने हा लक्ष्मी जी के पास बोला और थी उस हाथी के पास आकर बोला। भगवान उस हाथी के पास आकर सबसे पहले अपने चक्र से उस मगरमच्छ के सिर को काट दिए और हाथी की रक्षा की। भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं, तुरंत, देर नहीं करते हैं। द्रौपदी ने पूछा प्रभु आपने मेरी लाज रखने में देर क्यों कर ली? कभी कभी हमें यह प्रश्न होता है। द्रौपदी को भरी सभा में नग्न करने का प्रयास किया गया, बहुत बहुत सबकी शरण में गई, किसी ने शरण नहीं दी। अंत में द्रौपदी ने कृष्ण की शरण ली और तुरंत कृष्ण आ गए। कृष्ण आने के बाद द्रौपदी ने कहा भैया तुम्हें मेरी रक्षा करनी थी तो इतने देर क्यों आए? भगवान कृष्ण ने कहा कि बहना मैं तो तुम्हारे बाजू में था, परंतु तुमने कहा हे कृष्ण द्वारकावासी, तुमने कहा कि द्वारका के कृष्ण मेरी रक्षा करो, अब मैं तुम्हारे वचन को कैसे टाल सकता हूं? मुझे पहले यहां से द्वारका जाना पड़ा और द्वारका से यहां पर आया, इसलिए थोड़ा लेट हो गया, नहीं तो मैं तत्पर रहता हूं, तुरंत रक्षा करता हूं। तो प्रसादा अभिमुखम, भगवान कृपा देने में तत्पर रहते हैं, ये भगवान का एक गुण है। और नारद मुनि कहते हैं इक्षणम वदन शश्वत प्रसन्न, शश्वत प्रसन्न वदन इक्षणम, भगवान के इक्षण, इक्ष का अर्थ होता है आंख और वदन का अर्थ होता है मुख। भगवान के मुख और भगवान की आंख शाश्वत प्रसन्न, शाश्वत निरंतर प्रसन्न नहीं रहती है। ये भगवान के रूप का वर्णन हो रहा है। भगवान कभी टेंशन में नहीं आते, नारद मुनि कह रहे हैं। हे ध्रुव, तुम्हें जिस भगवान का ध्यान करना है वे कभी टेंशन में नहीं रहते हैं। शाश्वत शाश्वत प्रसन्न वदन ईक्षणम, वे शाश्वत निरंतर प्रसन्न रहते हैं। उनकी आंखें और उनका मुख शाश्वत शाश्वत प्रसन्न रहते। भगवान कभी टेंशन में नहीं होते हैं कि कभी लक्ष्मी जी ने डांट दिया तो लक्ष्मी जी के साथ झगड़ा हो गया और बेचारे टेंशन में आ गए, और कभी कभी मंदी चल रही है इसलिए थोड़ा टेंशन में आ गए। भगवान ये सब इस मनुष्य को है। यद्यपि भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड का पालन कर रहे हैं फिर भी बिल्कुल प्रसन्न है, और इस संसार में रहने वाला मनुष्य अपनी पत्नी और बच्चे का पालन करता है, उसके मुख के सामने देखोगे तो लगेगा पूरे भारत का भार इसके सर पर है। मनमोहन सिंह का भाई ही है लगता है। यदि भी वो पत्नी और बच्चों का पालन भी भगवान ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना टेंशन में मनुष्य रहता है, दुखी रहता है। भगवान भगवान है, बिल्कुल प्रसन्न रहते हैं। मैं एक समय की एक सत्य घटना में आपको बताऊं। कुछ साल पहले ब्रिटिशर्स हमारे इस भारत के ऊपर शासन कर रहे थे, तो गांधी जी की कृपा से सब लोग चले गए, बेचारे थक कर चले गए, बापू थका दिए सबको आंदोलन कर करके। खैर, लेकिन ब्रिटिशर्स जब यहां पर थे, जब ब्रिटिश देश से यहां पर आए, तो वहां तो एक ही भगवान यीशु ख्रिस्त को, जीसस क्राइस्ट को मारने वाले थे। परंतु ये जब भारत में आए तो कंफ्यूज हो गए। ये सत्य बात है, मुसलमान के एक ही भगवान है, अल्लाह को मानते हैं। क्रिश्चियन जो है वे केवल जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, परंतु हिंदू में ही बहुत सारे भगवान हैं। ये देवी, ये देवता, ये भगवान, वो भगवान, और ये तो ठीक है। आज तो मनुष्य भी पैंट शर्ट पहनने वाले भी अपने आप को भगवान मानते हैं। ये ब्रिटिशर्स जब यहां पर आए तो बिल्कुल कंफ्यूज हो गए कि यहां पर भारत में इतने सारे भगवान है, वास्तव में भगवान है कौन? ये साईं बाबा भी कहते हैं सबका मालिक एक, प्राय सब लोग कहते हैं मालिक एक है, भगवान एक ही है, तो इतने सारों को क्यों मानते हैं? ये सब में भगवान है कौन, ये हम सर्च करेंगे। तो वो तो बहुत बुद्धिमान होते हैं। उसने एक जज को चुना और कहा कि अब तुम पता लगाओ भगवान, वास्तविक भगवान कौन है। तो उन्होंने कहा कि भारत वाले जितने लोगों को भगवान मानते हैं सबकी तस्वीर मेरे पास रखो और उससे मैं पता लगाऊंगा कि भगवान कौन है। तो सबकी तस्वीर आई, दुर्गा देवी की तस्वीर आई, तो सोचा कि इसके हाथ में तो त्रिशूल है, अब जो खुद अपनी रक्षा करने के लिए त्रिशूल और मशीन गन रखता है वो भगवान कैसे हो सकता है। छोड़ो, हाथ में त्रिशूल है इसलिए कुछ काम, जैसे सिपाही के हाथ में भाला होता है तो इसका अर्थ है कि ये किसी काम में लगाया गया है। हाथ में त्रिशूल इसका अर्थ किसी के काम में लगी हुई है, ये भगवान नहीं है। देवी देवताओं के बहुत फोटो आए, शिवजी का फोटो आया, शिवजी का फोटो आया तो देखा कि ये प्रवचन कर रहे हैं और हाथ में माला है। ये माला जप रहे इसका अर्थ है कि ये किसी भगवान की माला जप रहे, ये भगवान नहीं है, इसके परे और कोई भगवान है, चलो निकालो, ये भी नहीं। जीसस क्राइस्ट आए, अरे सूली पर चढ़ा दिए, ये तो हो ही नहीं सकते। बेचारे जीसस क्राइस्ट ने भी अपने बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि मैं भगवान हूं, उन्होंने क्लियर लिखा है आई एम नॉट अ गॉड, आई एम सन ऑफ गॉड, लेकिन ये लोग लगा दिए। मोहम्मद पैगंबर ने भी कभी नहीं कहा कि मैं अल्लाह हूं, उन्होंने कहा मैं पैगाम लेकर आया हूं, मैं एक पैगंबर हूं। अंत में घूमते घूमते कृष्ण का फोटो आया, कृष्ण का फोटो आया तो उसने सोचा कि ये बालक बिल्कुल टेंशन फ्री है, न तो इसके पास कोई अस्त्र है शस्त्र है, और बिल्कुल मौज और मस्ती से खड़ा है और गा रहा है और हंस रहा है और बंसरी बजा रहा है बिंदास है, इसको कोई टेंशन नहीं है। आप देखेंगे कृष्ण की फोटो जितनी भी है दोनों हाथ में बंसरी लेकर या तो गा रहे हैं या तो हंस रहे हैं। इस संसार में फोटो बनाने वाले भी इतने समझदार हैं कि कभी भी कृष्ण की रोती हुई या कृष्ण को टेंशन वाला फोटो नहीं बनाते हैं। उसने कहा कि ये ग्वाला जो है बिल्कुल टेंशन फ्री है और गाता व्यक्ति तब है जब आनंद में रहता है, तो यही भगवान है। उन्होंने निश्चय किया कि ये कृष्ण ही भगवान हो सकते हैं। तात्पर्य यह है कि प्रसन्न वदन शश्वत, भगवान शश्वत प्रसन्न रहते हैं। भगवान चाहे भी कि मैं दुखी हो जाऊं, कभी नहीं हो सकते। जैसे सूर्य की कभी इच्छा हो जाए कि मैं अंधकार के साथ कभी भेंट करूं, तो ये कभी हो सकता है? जहां सूर्य जाएगा वहां से तो अंधकार करोड़ों गुना दूर चला जाएगा। भगवान चाहे भी कि मैं दुखी हो जाऊं, भगवान नहीं हो सकते। कभी कभी लोग प्रश्न पूछते हैं कि भगवान क्यों दुखी नहीं होते हैं, भगवान को दुखी होना चाहिए। इस संसार में सभी लोग दुखी हैं और सभी लोग भगवान के पुत्र हैं, तो सभी लोग के दुख को देखकर भगवान को दुखी होना चाहिए। परंतु भगवान दुखी होना चाहे भी फिर भी भगवान नहीं हो सकते। तो भगवान परम सुखी हैं, परम प्रसन्न हैं। यद्यपि भगवान की 16108 रानी है, एक पत्नी को संभालने में कितना टेंशन और कितना भार ढोना पड़ता है। 16108 पत्नी रखते हैं फिर भी खुश है आनंदित, कभी भी किसी का कोई टेंशन नहीं। तो भगवान प्रसन्न वदन, भगवान की आंखें और भगवान का मुख प्रसन्न है। नारद मुनि आगे कह रहे हैं सुनासम, भगवान की जो नासिका है, हे ध्रुव भगवान की नासिका बहुत सुंदर है। किसी की नासिका बहुत बड़ी होती है, देख कर ही डर जाते हैं। वास्तव में किसी की सुंदरता नासिका के ऊपर बहुत डिपेंड होती है। कितना भी सुंदर मुख हो लेकिन हमारे जैसी बड़ी नाक हो तो व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है। नासिका के ऊपर भी बहुत डिपेंड होता है। भगवान की नासिका बहुत ही सुंदर है। तो सुनासम सुब्रुवम, भगवान की भौहें जो है, ये सु का अर्थ है सुंदर, सुष्टु रूपेण सुंदर, बहुत सुंदर भगवान की भौहें हैं। चारु कपोलम, चारु का अर्थ है सुंदर और कपोल का अर्थ है गाल। भगवान के गाल बहुत सुंदर है, भगवान की गाल देखते ही चुमने का मन हो जाता है। और जब भगवान को यशोदा मैया सुंदर सुंदर कुंडल पहनाती है तो वह कुंडल का जो प्रकाश है सूर्य की किरण कुंडल पर पड़ती है और कुंडल का प्रकाश उसका रिफ्लेक्शन उसके कपोल गाल पर पड़ता है, तब जब कृष्ण के गाल चमकते हैं अद्भुत दिखते हैं। उसकी गाल के ऊपर ही लाखों लोग फिदा हो जाते हैं। ब्रज के सखा कहते हैं कि अरे सारे लड़का बना है तो इतना उत्पात मचा कर रखा है, गांव में किसी को शांति नहीं लेने देता है, गोपिया को टेंशन, गायों को टेंशन, बछड़े को टेंशन, लड़का बना है तो इतना उत्पात मचा कर रखा है। अरे सारे यदि लड़की बना दिया होता तो लाखों लोग गला काट कर मर जाते हैं। कट जाते गला, करोड़न के लाखों लोग तुझे प्राप्त करने के लिए मर गए होते। भगवान बहुत सुंदर है। तो सुब्रुवम चारु कपोलम, सुंदर गाल है। और सूर सुंदर हद हो गई, सूर का अर्थ होता है देवता, और देवताओं के लोक में भी भगवान की प्रशंसा होती है कि वाह रे वाह कितने सुंदर भगवान है। मनुष्य के लोक में मनुष्य की प्रशंसा होती है, परंतु इस मनुष्य के लोक में अच्छे से अच्छे सुंदर व्यक्ति देवता की नजर में तो बिल्कुल बेकार ही है। जैसे सुअरों की जाति का कोई अच्छा सुअर हो तो मनुष्य की नजर में तो वह सुअर ही है। ठीक उसी प्रकार कोई अच्छा मिस यूनिवर्स भी यदि देवता देखता है तो उसे सुअर के समान दिखता है, इसमें कुछ नहीं, क्योंकि मनुष्य से करोड़ों गुना सुंदर देवता लोग है। मनुष्य से करोड़ों गुना देवता लोग भी भगवान को देखकर मोहित हो जाते हैं, भगवान की सुंदरता को प्रशंसित करते हैं। देवताओं से भी करोड़ों गुना भगवान सुंदर है। तो सूर्य सुंदर, भगवान सूर्य देवताओं से भी सुंदर है। सूर्य सुंदर है, वास्तव में भगवान सूर्य सुंदर है और बाकी सब छछुंदर है। ये सत्य बात है। और भगवान सूर सुंदर का एक अर्थ यह भी है कि सूर सभी देवतागण भगवान के सुंदरता का वर्णन करते रहते हैं। बड़े बड़े देवता ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, ये सभी लोग, सरस्वती इत्यादि भगवान के सुंदरता की चर्चा करते रहते हैं। भगवान इतने सुंदर ही हैं। परंतु इस संसार के कुछ मूर्ख लोग ऐसे हैं कि जिस भगवान की सुंदरता का वर्णन ब्रह्मा जी करते हैं, शिव जी करते हैं, इंद्र करते हैं, सरस्वती करते हैं, सुखदेव गोस्वामी करते हैं, परंतु संसार में रहने वाला मूर्ख मनुष्य भगवान की सुंदरता को छोड़कर भगवान को निराकार मानते हैं। इतना क्लियर नारद मुनि कह रहे हैं कि भगवान की सुंदर नाक है, भगवान का सुंदर गाल है, भगवान का सुंदर मुख है, आंखें हैं। कहां निराकारवाद यहां पर है बताइए, कहां भगवान निराकार हो सकते हैं? ये नारद मुनि कह रहे हैं, उस भरी सभा में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, परीक्षित महाराज सुन रहे हैं, सूर सुंदरम देवता लोग कह रहे हैं, ब्रह्मा जी शिव जी कह रहे हैं, लेकिन इस संसार का मूर्ख व्यक्ति ये सब की बात को न मानते हुए भगवान को निराकार कहते। भगवान को कोई आकार नहीं, भगवान एक ज्योति है, मूर्ख है। कभी कह दिया जाए कि आपकी पत्नी निराकार हो गई तब क्या होगा? किसको फोन करेगा? मान लीजिए किसी का एंगेजमेंट हुआ है और उसकी जो होने वाली पत्नी गांव में रहती और किसी ने आकर समाचार दिया कि आपकी पत्नी निराकार हो गई, कर सकता है फोन? नहीं, भगवान कभी निराकार नहीं हो सकते। भगवान का आकार है, भगवान का बहुत सुंदर रूप है, भगवान के साथ बात कर सकते हैं, भगवान को भोजन दे सकते हैं, भगवान को खिला सकते हैं, हाँ भगवान के साथ बात कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। नंबर चाहिए? किसी के पास नहीं होगा, चाहिए आपको? हमारे यहाँ का नंबर पहले 60 डिजिट का था, अभी 8 डिजिट का हो गया ना यहाँ का, और मोबाइल नंबर ज्यादा से ज्यादा 10 डिजिट का होता है, परंतु भगवान का जो नंबर है 16 डिजिट का है। हरे कृष्णा हरे डायरेक्ट बात कर लीजिए, लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि टाइम गलत है। भगवान का नाम जपने से भगवान के साथ बात कर सकते हैं, परंतु गलत टाइम पे करते हैं ना, इसलिए नहीं हो सकती है। बहुत लोग कई सालों से जप रहे हैं परंतु नहीं हुई है बात। क्यों? क्योंकि टाइम, भगवान की जो लाइन है ये दोपहर को बहुत एंगेज रहती है, क्योंकि सब लोग दोपहर को ही लग जाते हैं हरे कृष्ण करने के लिए, इसलिए ये लाइन दोपहर को बहुत एंगेज रहती है। सुबह 7:15 के बाद में दूसरे दिन सुबह 5 बजे तक ये बहुत एंगेज रहती है। यदि आपको भगवान से बात करना है तो बेस्ट समय आपको दूं 5 से 7, बिल्कुल बेस्ट है। 5 से 7 में यदि आप महामंत्र का जप करते हो तो डायरेक्ट भगवान के साथ बात कर सकते हो, क्योंकि तब कोई होता ही नहीं। कौन इतना जल्दी उठकर भगवान के साथ बात करेगा? कौन ये मगजमारी करेगा? और कुछ लोग तो एक बात करना चाहते, उठना चाहते, अलार्म भी रखते हैं लेकिन उठ नहीं पाते हैं, क्योंकि संसार में वैज्ञानिकों की कृपा से अलार्म में भी स्नूज सिस्टम आ गई है। बजता है कुछ देर, दबा देते हैं तो 5 मिनट के बाद बजता है, और दबा देते और पांच मिनट करते हुए 3 घंटा तो उसमें ही बिता देते हैं वो दबा दबाने में ही। और ये माया देवी कृपा से सुबह इतनी अच्छी नींद आती है, क्या बात होता है, जैसे जैसे सुबह होती जाती इतना अच्छा नींद आता है। कोई 1 लाख रुपया भी दे दे फिर भी कोई खड़ा नहीं होएगा मेरे जैसा व्यक्ति। तो नींद तो सोना तो सोने से भी बड़ा है, वो बेड पे सोना, वो गहने वाले सोने से भी बड़ा सोना है। लेकिन मैं कह रहा था भगवान से बात करने का 16 डिजिट का नंबर लगाइए, घुमाते रहिए, लेकिन पूरा दिन में घुमाएंगे नहीं होगा, सुबह घुमाइए। और आप विरार में रहने वाले भक्तों के लिए परम सौभाग्य है कि आने वाले रविवार से यहां पर रोज सुबह 5 बजे से मंगला आरती, गुरु पूजा और भगवान के नाम का जप यहीं पर बैठकर फोन लगाया जाएगा और भगवान के साथ नित्य बातें करेंगे। सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक पूरे दिन तक यहाँ पर कार्यक्रम होगा, इसलिए आप सब लोग इस कार्यक्रम में भाग लीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। लेकिन ध्यान रहे और सब टाइम में भगवान का दर्शन कर सकते, बात करने के लिए तो 5 बजे आना पड़ेगा। 5 बजे यहाँ पर जपा होगा कि बाद में पराग प्रभु अनाउंसमेंट करेंगे। तो मैं कह रहा था सूर सुंदरम भगवान का आकार है, भगवान के साथ बात कर सकते हैं। और जो निराकार में मानते हैं वे तो भगवान गीता में कहते हैं क्लेश अधिक तर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवाद भी अवाप्यते। निराकार वाद तो केवल दुखी होता रहेगा, कभी सुख प्राप्त नहीं करेगा। नारद मुनि आगे कहते हैं भगवान तरुणम, भगवान का एक गुण है भगवान तरुण। तरुण का अर्थ होता है 16 साल की उम्र। भगवान बूढ़े नहीं होते हैं, नारद मुनि का कहना यह है। आपने देखा कभी भगवान की दाढ़ी, कृष्ण की कभी दाढ़ी उग गई है, कभी मूछ आ गई है? कभी नहीं। आज कलयुग में भगवान मानने वाले के तो बाल सफेद हो जाते हैं, दांत गिर जाते हैं, बुखार आता है। कृष्ण की यह हालत नहीं, कृष्ण तरुणम भगवान। नारद मुनि ध्रुव महाराज को कहते हैं तरुण, बिल्कुल जवान। इस बात को ब्रह्मा जी भी कहते हैं अद्वैत मच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम। यद्यपि भगवान सबसे पुराण है, सबसे पुराने हैं, लेकिन फिर भी नव यौवनम च, फिर भी नव युवान ही दिखते हैं, ये बूढ़े होते ही नहीं। कुरुक्षेत्र की भूमि में भगवान कृष्ण की उम्र 125 साल की थी, परंतु फोटो देखिए 16 साल के जवान लगते हैं। आज 125 साल का बूढ़ा जिएगा ही नहीं, और जिएगा तो बेड के ऊपर सोया हुआ दिखेगा, हिल नहीं सकता है। लेकिन भगवान तरुणम नव यौवन, भगवान का रूप यौवन है, ये कभी बूढ़े नहीं होते हैं। और कहते हैं नारद मुनि कहते हैं मैं कितना गिनाऊं आपको, कहते रमणीय अंग, भगवान के सभी अंग रमणीय है। अब कितना कितना अंग गिनाऊं आपको, रमणीय अंग, भगवान के सभी अंग रमणीय है, सुंदर है। और यदि भगवान इस यदि कोई व्यक्ति इस अंग को देखता है या इसका ध्यान करता है या भगवान के अंगों के बारे में सुनता है तो उसका मन जो है उसमें रम जाता है, रमणीय। मन को वश में करना बहुत मुश्किल है, परंतु भगवान के अंग का, भगवान के रूप का श्रवण करता है, भगवान का दर्शन करता है तो उसमें मन और सभी इंद्रिया रम जाती है, आनंद प्राप्त करने लगती है। श्लोक तो यहाँ पर समाप्त नहीं होगा, परंतु एक छोटी सी कथा आपको बताकर यहाँ पर अंत कर दूं कि किस प्रकार भगवान का दर्शन करके हमारी समस्त इंद्रिया उसमें आसक्त हो जाती है। एक बार एक चोर का काम है चोरी करना, ये चोरी करने के लिए किसी का घर ढूंढ रहा था तो एक व्यक्ति के घर पर चोरी करने गया, और जिसके घर पर चोरी करने गया उसके घर पे ही भागवत सप्ताह थी 7 दिन की। और ये चोरी करने गया तब भागवत सप्ताह का 4th दिन चल रहा था और चतुर्थी कृष्ण जन्मनी, 4th दिन में कृष्ण का जन्म हो जाता है भागवत कथा में। और जब ये चोर चोरी करने उस घर पर आया उस समय ये भागवत कथाकार भगवान के रूप का वर्णन कर रहे थे कि कृष्ण का रूप इतना सुंदर है, और यह वर्णन कर रहे थे कृष्ण जब घर से निकलते हैं तो माता यशोदा उसे बहुत ही सुंदर गले में बहुत ही सुंदर सोने का हार पहनाती है, हाथ में सोने का बाजूबंद पहनाती है, कमर में सोने का गहना पहनाती है, पांव में सोने की घुंघरी पहनाती है। तो ये चोर ने सोचा इस घर में क्या सोना कुछ है ही नहीं, ये जो बोल रहा है उसको लूटना चाहिए। ये लड़का उसको तो पता नहीं था ये कृष्ण कौन यशोदा कौन। ये बता रहे थे कि कृष्ण जब घर से निकलते हैं तो यशोदा इतना इतना पहनाती है। तो ये साधु ये प्रवचन करने वाले जब प्रवचन करके कथा समाप्त करके जा रहे थे तो ये चोर ने कहा कि ये छोटा हाथ क्या मारना, ये घूमकर रात को उस पुराणी का जो कथा करने वाले थे उसका पीछा किए, और पीछा करके रास्ते में अंधेरे में जब अकेले जा रहे थे तो उसको पकड़ लिए। कहा कि जिस लड़के का तुम बात कर रहे थे वो लड़का कहां मिलेगा, साला बहुत गहना पहन कर जाता है, किसी के घर पे भी इतना गहना नहीं मिलता है, लड़का है एक थप्पड़ मार कर ले लूंगा वो तो कुछ नहीं कर सकता है, कहां मिलेगा वो। तो साधु ने कहा कि कहां मिलेगा वो तो शास्त्र में देखना पड़ेगा। तो कहा चलो शास्त्र खोलो। तो चोर पुरानी चोर को घर पे लेकर आया, उस पुराने के घर पे गए, घर पे जाकर वेद शास्त्र भागवत खोला, देखा कि ये आपको मथुरा मंडल में वृंदावन नाम जगह है वहां पर महावन में वो आपको मिलेंगे, देखो कितने बजे मिलेंगे। टाइमिंग क्या है उसके घर से निकलने का, देखा उसने भागवत के पत्ते उलट कर सुबह भोर में ब्रह्म मुहूर्त में निकल जाते हैं। अरे ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं, वो चोर चक्कू दिखाकर कहता है ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं। तो 3:30-4 बजे वे घर से निकलते हैं और ठीक 5 बजे तो वे पहुंच जाते हैं वहां पर। ठीक है ये पक्का एड्रेस आप दो मुझे, पक्का एड्रेस लिया और एड्रेस लेकर तुरंत वहां से निकले। अब साधु ने सोचा पुराने सोचा ये तो 5000 वर्ष पहले होता था, ये कहां, ये तो घूम कर वापस थक जाएगा। ये तो पुराने को विश्वास नहीं था परंतु चोर को पूर्ण विश्वास था कि ये मुझे बालक वहां मिलेगा। तो ये गया घूमते घूमते 2 दिन के बाद वृंदावन पहुंचा, और वृंदावन में पहुंचकर महावन में एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठा कि आएगा तो तुरंत पकड़ लूंगा। पूर्ण विश्वास और पूर्ण श्रद्धा थी, और भगवान विश्वास से जीते जाते हैं, श्रद्धा से जीते जाते हैं। 3 बजे उस पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया, सोचा कि यदि पहले से जाकर खड़ा रह जाता हूं तो वे मेरे सामने आएगा नहीं, डर जाएगा, क्योंकि लड़का है ना, लड़का मुझे देखकर डर जाएगा, इसलिए पेड़ के ऊपर छिप जाता हूं। पेड़ के ऊपर 3 बजे से छिप कर ऊपर नीचे देखने लगा, धीरे धीरे करके 5 बजा तो बहुत दूर से कई सारी गाय और कई सारे ग्वाले और सब लोग वहां से आ रहे थे। तब इसको लगा कि नहीं ठीक, उसने पुराने ने जो बताया ठीक बताया, और सब लोग कृष्ण और कई सारी गैया बछड़े सब लोग वहां से आए एक दिशा से, और कृष्ण क्योंकि गोपाल है गैया का पालन करने वाले हैं इसलिए कृष्ण सभी गाय के पीछे चलते हैं। तो सब गैया इत्यादि सब कुछ चल रहा था तो सब लोग उस पेड़ से पसार होकर चले गए और कृष्ण सबसे पीछे थे। ये चोर ने कृष्ण को पकड़ लिया पूरा आलिंगन कर लिया और पकड़कर कहा कि तुम कहीं नहीं जा सकते हो। कृष्ण को खड़ा रखा, तुमने जितने गहने पहने हैं सब निकालो चलो। कृष्ण ने कहा निकालना ही पड़ेगा। कृष्ण ने कहा मैं नहीं निकालूंगा। उसने कहा कि तुम्हें गहने निकालने पड़ेंगे। कृष्ण ने कहा नहीं निकालूंगा तो तुम क्या करोगे। उसने कहा तुम अपने गहने निकालो। कृष्ण ने कहा ठीक है। कृष्ण ने धीरे धीरे करके अपने सारे गहने निकाले। तब उस समय वह चोर कृष्ण के रूप को देखता रहा। जब तक कृष्ण अपने गहने निकाले तब तक चोर ने देखा कृष्ण का रूप ध्यान से, सुंदर कपोल, सुंदर आंखें, सुंदर वदन, सुंदर हाथ, सुंदर पांव, सुंदर सुंदर कृष्ण का रूप देखा। और कृष्ण ने अपने सारे गहने निकालकर एक कपड़े में पोटली बांधकर उस चोर को देने लगे। लो भाई आपको यह गहने चाहिए, रखिएगा। चोर ने कहा प्रभु अब मुझे यह गहने नहीं चाहिए। कृष्ण ने कहा रखो, अब तुम इसके लिए आए थे, अब तो चक्कू दिखा रहे थे, अब कहते हो नहीं चाहिए। चोर ने कहा कि आपके रूप को देखकर मैं मोहित हो गया, मुझे आप ये गहने नहीं चाहिए, रखो। चोर ने ना कहा, कृष्ण ने कहा कि रखो। चोर ने ना कहा कि नहीं चाहिए। कृष्ण ने कहा कि जबरदस्ती उसे दे दिया कि रखो आप लेकर जाओ, और कृष्ण वहां से चले गए। चोर के पास गहने आ गए, परंतु चोर कृष्ण के रूप को देख लिया था, अब तो सोया नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, उठा नहीं जाता। अरे साधारण किसी संसार की किसी अच्छी लड़की को देख लेता है तो लड़का दो तीन दिन खाना ठीक से नहीं खाता है, नींद हराम हो जाती है, रात को सो भी नहीं सकता है। ये तुच्छ रूप को देखकर करोड़ों करोड़ों कामदेव को मोहित करने वाले कृष्ण कितने सुंदर होंगे, कल्पना कीजिए। वो चोर को गहने मिले परंतु नींद उड़ गई, और वापस अपने घर पर आया, पुराने के पास गया, पुराने को शाबाशी देने के लिए गया कि बहुत थैंक यू तुमने। पुराने ने देखा कि ये दूर से चोर आ रहा है तो भागने लगा, लगता है वहां कुछ मिला नहीं है इसलिए मुझे मारने के लिए आ रहा है। पुरानी बहुत आगे आगे भागा, चोर पीछे पीछे, लेकिन चोर ने कैसे भी करके उसे पकड़ा और पकड़कर प्रार्थना किया कि आपने मुझे जो पता और एड्रेस बताया, टाइमिंग बताया, बिल्कुल सही बताया। पुराने ने कहा अच्छा। पुराने कहा, चोर ने कहा कि मुझे कृष्ण मिले और आपने जैसे कहा था वैसे ही निकला। पुराने ने कहा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये तो 5000 वर्ष पहले की बात है, असल में भगवान की लीला नित्य लीला है। तो चोर ने कहा यदि विश्वास नहीं तो देखो ये गहने। पुराने आश्चर्यचकित हो गया, और पुराने ने सोचा कि इतनी इतनी कथा कर रहा हूं परंतु मुझे विश्वास नहीं है, परंतु धन्य है यह चोर विश्वास के कारण ही भगवान का दर्शन किया। तात्पर्य यह है कि एक चोर भी भगवान के रूप को देखकर महान साधु बन जाता है। ये भगवान का रूप यहां पर लिखा है कि रमणीय अंग, भगवान के अंग को देखकर मन और इंद्रिया रमणीय हो जाती है, रम जाती है उसमें। तो इस प्रकार से भगवान के रूप का वर्णन नारद मुनि कर रहे हैं, तो और ध्रुव महाराज भगवान के रूप का वर्णन सुन रहे हैं, तो हम भी इस प्रकार से भगवान के रूप का वर्णन सुनेंगे और किस प्रकार से ध्रुव महाराज भगवान के रूप का ध्यान करते हैं और भगवान की प्राप्ति करते हैं, ये हम अगले रविवार को श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा हरे।